18 गुना ज्यादा होता है।
मैं एक इसी को कंटिन्यू करके मेरा सवाल का पूरा जवाब दे दें आप, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में जो इस्लामिक फाइनेंसिंग के नाम से फाइनेंसिंग की जाती है, और वो लोग सुन भी रहे होंगे मुफ्ती साहब आपको, कि यहाँ पर जैसे घर की खरीदारी है, घर की मैंने $300,000 के घर को ख़रीदा है, तो उस पर कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप मुझे $400,000 देंगे, इज़ इट अलाउड अंडर द शरिया और नो?
जो यूरोप में स्पेशली या अमेरिका में जो हाउस फाइनेंसिंग इस्लामिक हो रही है, तो वो पार्टनरशिप की बेसिस पे हो रही है कि भाई उसकी जितनी भी, यानी जैसे मैं नाम लेना चाह रहा हूँ, लारिबा बैंक का फेडरल, वो बाकायदा हाउस फाइनेंसिंग कर रही है अमेरिका में, स्पेशली न्यूयॉर्क में। तो वो क्या करते हैं कि वो पार्टनरशिप बेस्ड एक्टिविटी करती है और पार्टनरशिप बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है कि अगर लेट सपोज आपके पास $50,000 आपके पास हैं और आपको मजीद चाहिए लेट सपोज $5 million, तो $50,000 आपके और $5 million हमारे, हम दोनों पार्टनरशिप में इधर खरीद लेंगे और उसी के हिसाब से मैं आपसे प्रॉफिट कैलकुलेट करता जाऊंगा, दैट इज टोटली लीगल एज पर शरिया।
बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपका बेनता शुक्रिया। ये तो हम कर्ज से मुतलिक बात की। बड़ा कन्फ्यूजन इस वक्त फैलाया जा रहा है, बल्कि एक मुझे एक ईमेल आई, एक शख्स जिसका मैंने यहाँ पे इंटरव्यू किया, उसके बारे में बड़ा अजीब सा बयान मुझे रिसेंटली मिला है। यानी बहुत से लोग कुरान पाक को के तर्जमे ही बदल सकते हैं, मेरा ख्याल है अल्फाज को तो नहीं बदल सकेंगे। रमज़ान के हवाले से, तरावी के हवाले से सुना है कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट और उल्मा के दरमियान पैक्ट हुआ है उसके मुताबिक चला जा रहा है, सोशल डिस्टेंसेस भी मेंटेन किए जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद वो कहते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर होने वाले की तादाद में इजाफे के साथ अमवात की शरह भी बढ़ गई है, और कुछ लोग मुतासरीन की तादाद बढ़ने का सबब ये बताते हैं कि बेहतर टेस्टिंग हो रही है, ये भी कहते हैं, और दूसरा ये कहते हैं कि लोगों ने वो मस्जिदों में जो जाना शुरू कर दिया, ये जर्म तो आप अपने पाँव के साथ लेके भी अपने घर पे जा सकते हैं, तो इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे?
जी, बिल्कुल जी, बहुत अच्छा सवाल है, टू द पॉइंट मैं जवाब देना चाहूंगा कि देखें, सिर्फ और सिर्फ मसाजिद ही नहीं, मसाजिद में तो हमारे 20 पॉइंट पे एग्री हो गए हैं गवर्नमेंट और उलमा। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे लोग फॉलो भी कर रहे हैं SOPs, इवन यहाँ पे कि जहाँ पे हमारी रहायश है, ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी सिंगल डे पुलिस आती है, वो चेकिंग करती है, चेक एंड बैलेंस रखती है, लेकिन जाहिर है चेक एंड बैलेंस हर मस्जिद पे तो नहीं रखी जा सकती। बहुत सारी मसाजिद ऐसी हैं कि जहाँ पे SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। अच्छा, दूसरी एक हमारी बदकिस्मत ये भी है कि इतनी सारे अमवात के बावजूद भी पाकिस्तान में कोरोना को मिसकंसिडर किया जा रहा है, दैट्स वेरी अलार्मिंग।
सोशल डिस्टेंस ये है जो इसको कंट्रोल करेंगे।
एग्जैक्टली जी, तो हमारे यहाँ तो सिर्फ मसाजिद ही नहीं, बल्कि अगर मैं यहाँ पे बता दूँ कि बाजारों में, क्योंकि वी आर इकोनॉमिकली वेरी वीक, हम इस पोजीशन में है नहीं जिस तरह के डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो हमारे यहाँ जो रोजमर्रा के मजदूर हैं, दिहाड़ीदार हैं, उनके लिए तो रोजाना कुछ मजदूरी मिल जाती है तो ठीक है, वो रात को कुछ ले जाते हैं, बच्चों के लिए नहीं मिलती तो वो फिर भूखे सोते हैं, तो इनकी मजबूरी है कि वो बाहर निकले। हाँ, हुकूमत ऐलान करती है कि भाई हम इनको पैकेजेस दे रहे हैं, और दे भी रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक और कितनों को, तो लूप होल्स हैं, देयर आर लाइक सोशल डिस्टेंसिंग अभी तक उस तरह नहीं हो रही जिस तरह की होनी चाहिए थी, एंड प्रोबेबली अभी तो हमने एक्सटेंशन जो पाकिस्तान में हुई है वो 12 मई तक हुई है कि भाई लॉकडाउन 12 मई तक, लेकिन अभी कुछ न कुछ नरमी आज से इन्होंने स्टार्ट कर दी है, एंड बिकॉज ऑफ द लोकल प्रेशर यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर था कि भाई हमारा बहुत ज्यादा लॉस हुआ है एंड वी कैन नॉट बी मोर, तो लेट्स सी, अल्लाह खैर करे, बट इट्स वेरी अलार्मिंग। और जितनी चीजें से बल्कि अभी तो जेपी में रेशो पूरी सूबे से जितनी प्रोविंसेज सबसे बढ़ गया है जेपी में, द रीजन बिहाइंड दैट इज के ये लोग बिल्कुल
सोशल डिस्टेंसिस का ख्याल नहीं रख रहे। مولانا صاحب, بلکہ میں بھی اس کو دیکھ رہی تھی کہ آپ جیسے لوگوں کو ڈیفینیٹلی نکل کے اس کے بارے میں بات کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے اجتماعات جو ہیں ان میں بھیڑ بھاڑ, شاپنگ کے وقت جو بھیڑ بھاڑ ہو رہی ہے اس کے لحاظ سے. مولانا صاحب, میرا دل چاہ مفتی صاحب, آئی ایم سوری مفتی, ہی از اے ویری ایجوکیٹڈ مین, جناب مفتی اسد گل, جیسا انہوں نے کہا ماسٹرز کیا, ایم فل کیا, پی ایچ ڈی اس وقت کر رہے ہیں, شریعہ آڈیٹنگ کرتے رہے خیبر بینک کے ساتھ, اور ماشاء اللہ پاکستان میں بڑے اچھے ایجوکیٹڈ لرنڈ لوگ موجود ہیں جو ان چیزوں کو لک آفٹر کر رہے ہیں. پاکستان میں کہتے ہیں کہ بازاروں میں جو لوگ ہیں وہ سوشل ڈسٹنسز کو مینٹین نہیں کر رہے, بہت قریب آ جاتے ہیں, اور یہ تو ایسا وائرس ہے جس کا کوئی ریلیجن بھی نہیں ہے. میں آپ سے زکوٰۃ کے حوالے پہ بات کرنا چاہتی ہوں, اور کنفیوژن جو یہاں پھیلایا جا رہا ہے ابراڈ رہنے والے کہ زکوٰۃ کو اور ٹیکس سسٹم کو مکس کیا جا رہا ہے, اور جو پاکستان کے بارے میں بولنے لگتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں دراصل جی پاکستان میں ٹیکس ہی نہ دیتے تھے, تو اس لیے 1400 سال پہلے اللہ میاں کو تو نہیں پتا تھا نا کہ بھائی پاکستان میں جا کے کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا مگر اللہ ڈڈ ناٹ مینشن اٹ ان دا قرآن. تو زکوٰۃ کا ذکر اتنا عرصہ پہلے آیا, تھوڑا سا بتائیے, کوئک ذرا بتائیے گا تاکہ ہم اگلی ملاقات میں کریں گے. ہمارے ٹاپ آف دا آور کا بھی وقت ہوا جا رہا ہے, تو میں آپ کو کل یا پرسوں میں دوبارہ لے کے آؤں گی. مگر یہ زکوٰۃ کے بارے میں, زکوٰۃ کو اور ٹیکس سسٹم کو لوگ مکس کر رہے ہیں کہ اگر آپ ٹیکس دیتے ہیں تو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے, نہ دیں.
جی جی جی, دیکھیں ٹیکس جو ہے ٹیکس از سم تھنگ ایلس اور زکات از سم تھنگ ایلس. زکات obligatory obligation ہے فرام المائٹی, رائٹ, اور ٹیکس جو ہے وہ ہمیشہ گورنمنٹ کی طرف لگاتی ہے جو آپ کو سروسز دے رہی ہے. اب وہ سروسز دے یا نہ دے, دیٹ از کوسچنیبل, لیکن ٹیکس لینا ان کا حق ہے اور وہ کسی بھی طریقے سے آپ سے لے سکتی ہے. اگر کوئی ٹیکس دیتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کا زکات نہیں دوں گا. زکات کے لیے جتنی بھی شرائط ہیں, جیسے زکات کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس مال تجارت ہو, جبکہ ٹیکس کے لیے مال تجارت ہونا شرط ہے ہی نہیں. زکات کے لیے دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس مال پہ ایک سال گزرا ہو, ٹیکس کے لیے کوئی شرط ہے ہی نہیں کہ اس پہ ایک سال گزرا ہو. ٹیکس کوئی بھی مطلب میں, جیسے کچھ ڈائریکٹ ٹیکسز ہوتی ہے, کچھ انڈائریکٹ ٹیکسز ہوتی ہیں, اور وہ ٹائم ٹو ٹائم وہاں سے گورنمنٹ کلیکشن کر رہی ہوتی ہے. ہم کوئی چیز جب سیل اس میں لے رہے ہوتے ہیں تو یہ اتنا ساری پروڈکٹ جس کی قیمت کم سے کم ہو تو اس پہ بھی گورنمنٹ نے سیل ٹیکس لگایا ہوتا ہے. تو ٹیکس اور زکوٰۃ کو بالکل بھی آپس میں مکس نہیں کیا جائے. ایک اللہ کی جو اللہ کا حکم ہے اور ایک گورنمنٹ کا حکم ہے, اور ہم پر دونوں کا حکم ماننا واجب ہے. بیکاز جو قرآن مجید میں آیت ہے کہ ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, کہ اللہ کی مانو, رسول کی مانو, واولی الامر, اور پھر اللہ نے جو جن کو حاکم بنایا ہے آپ کے اوپر ان کی مانو. تو اب ظاہر ہے حاکم اگر جو بھی ہے اور جو بھی حکم لاگو کرتا ہے جو شریعت سے متصادم نہیں ہے, شریعت کو وائلیٹ نہیں کر رہی, یہ ہے تو فالو دے. اب زکوٰۃ ایکچولی ہمارے مال کا, اس کو اوساخ المال کہا گیا ہے. اوساخ عربی میں کہا جاتا ہے گندگی کو. تو جس طرح ہمارے پاکستان کے دیہاتوں میں گل کی چائے بنتی ہے تو وہ آخر میں جو بالکل جو چائے کی جو لہر بنتی ہے اوپر کی, تو وہ گند ہوتا ہے اور اس گند کو دور کر کے پھر چائے صاف ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح یہ ہے کہ ہنڈریڈ روپیز میں یا $100 میں صرف 2.5 آپ کو یہی گند نکالنا ہوگا. اگر یہ گند نکل گیا تو جس طرح چائے صاف ہو جائے گی, چائے صاف ہو جاتی ہے, اس طرح کا پورے کا پورا مال صاف ہو جائے گا. اگر چاہے اگر وہ گندگی نہیں نکالی تو یہ پورے کا پورا مال آپ کو آپ کے مال کو خراب کر دے گا اور اس میں برکت نہیں رہے گی. یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا فرمان ہے کہ زکوٰۃ نکل جائے تو جو باقی $97 بچتے ہیں یا $97 تو اس میں اللہ پاک برکت ڈال دیں گے. اب برکت کا مفہوم میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ برکت کا مفہوم یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ₹1 سے یا $1 سے دو بن جائیں گے, بلکہ برکت کا مفہوم یہ ہے, جو برکت کے معنی میں شریعہ میں وہ یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو آپ کی $1 میں وہ کام کر دیں گے جو باقی کسی دوسرے کا $2 میں کرتا ہے. تو ہم کہیں گے کہ بھائی اس کی ماں بہت برکت ہے. وہ برکت ایکچولی یہی چیز ہے کہ $1 میں آپ کا وہ کام ہو گیا کہ جو $2 میں ہونا چاہیے تھا, جو باقی کا $2 میں ہوتا ہے. جی
بہت شکریہ مفتی اسد گل صاحب, کراچی سے آپ ہمارے ساتھ ہیں. کراچی میں آج کیسا ویدر کیسا ہے؟ کراچی کا آج ویدر کیسا ہے؟ موسم
ویدر آلموسٹ ہاٹ، ہاں آلموسٹ ہاٹ، کیونکہ گرمیوں کی آمد آمد ہے اور ہوا تو ایز آلویز چلتی ہی ہے، لیکن جب سے رمضان اسٹارٹ ہوا ہے تو رمضان نے گرمی میں زور دینا شروع کر دیا،
گرمی نے زور پکڑنا شروع کر دیا. مگر الحمدللہ میں وہی سوچتی ہوں، میں بلکہ ابھی کل پرسوں بھی سوچ رہی تھی کہ ہم نے شدید لمبے روزے رکھ لیے اور اب تو ڈھلتے دن ہوتے چلے جا رہے ہیں، کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو الحمدللہ اب تو اگلے 5-6 سال کے بعد تو سردیوں کے روزے آ جائیں گے. جناب مفتی اسد گل، آپ کا بے انتہا شکریہ. مفتی اسد گل اس وقت کراچی میں ہیں، آپ نے ایم اے کیا ہے، آپ نے پی ایچ ڈی کیے کر رہے ہیں اس وقت، ایم فل آپ نے کیا ہے، آپ شریعہ کے لحاظ سے آڈیٹر کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں ان دا خیبر بینک. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. وعلیکم السلام. آپ ہماری فیس بک پہ ضرور تشریف لائیے اور آپ کی موجودگی ول میک اے ڈفرنس. آپ کا آج کا پروگرام انشاءاللہ یو ول واچ اٹ دیر. بہت اچھے طریقے سے آپ نے بات کی، بہت ہم نے لرن کیا. انشاءاللہ ول کال یو اگین سر. تھینک یو. مفتی اسد گل سے میں نے آپ کی بات کرائی. ٹاپ آف دا آور، اور اس کے بعد پھر کیا پیش کریں گے؟
اس کے بعد پھر ہم صاحب کو لے جائیں گے سن لائف کے جناب پردیپ جی، آج منڈے کا دن ہے تو پردیپ جی سے ملاقات کروائیں گے، اور اس کے بعد
ٹائم بہت 7 بجے ہم نے آپ کو لے جانا ہے. بہت شکریہ نگٹ مسجد کا، نگٹ مسجد نے ہمارا ایک سیگمنٹ ہے، مجھے بہت اچھا فیڈ بیک ملا، اور میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس سیگمنٹ کو سنیے گا، ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا بھی ضرورت ہوگی. جناب یوسف بدات صاحب موجود ہوتے ہیں، یوسف بدات صاحب ریڈیو پہ اور ٹیلی ویژن کے اوپر، ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن کے اوپر یوسف بدات صاحب موجود ہوتے ہیں. نگٹ مسجد یا اسلامک فاؤنڈیشن کے نام سے یہ ادارہ ہے، ون آف دا سب سے پہلی والی مسجد تھی. میں مسجد نگٹ کا پڑھی تھی نا، تو میں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ معظمہ سے مدینہ پاک گئے، تو خزرج قوم میں وہاں ایک راہب تھا بنی عمر، اس کا نام تھا، وہ راہب تھا، ایک راہب تھا وہاں پہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جاتے ہیں تو مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی. مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد وہاں پہ ایک اور مسجد بنائی گئی جو مسجد زرار کے نام سے، مسجد قبا ایک اور مسجد تعمیر کی گئی. اور مسجد قبا بھی یہ تھی کہ مسلمانوں کے لیے اس وقت کی سہولت کے لیے کہ لوگ مسجد نبوی میں آتے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تھے، مگر زیادہ لوگوں کے لیے وہاں پہ ایک اور مسجد قبا بھی بنا دی گئی. مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے نا، ہفتے میں ایک دن مسجد قبا میں بھی جا کے نماز ادا کیا کرتے ہوتے تھے. یہ جو راہب تھا نا خضر جی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی سلوک اتنا اچھا نہیں رکھا ہوا تھا، اور اس نے ایک مسجد زرار کے نام سے ایک مسجد بنائی. یہ صرف مسلمانوں میں رخنا ڈالنے کے لیے مسجد بنائی گئی تھی، جس کو کہ پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ رہے تھے، ایک جنگ حنین کے بعد واپس آ رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے اس مسجد زرار کی حیثیت آپ کو آ کے بتا دی تھی، حقیقت آپ کو بتا دی تھی، جس کو بعد میں میرا خیال ڈھا دیا گیا تھا، مسجد زرار کو ڈھا دیا گیا تھا. تو میں وہاں سے یاد کری تھی کہ نگٹ مسجد ون آف دا فرسٹ مسجد، ون آف دا اولڈسٹ مسجد ہم کہہ سکتے ہیں نگٹ مسجد کو. اور ماشاء اللہ اس مسجد میں کے ارد گرد
کی ڈنڈاس پہ جو تھی وہ ایک مسجد تھی، اور پیپ پہ ایک اور مسجد تھی اس زمانے میں، مگر یہ مساجد جو ہے،
مگر وہ آلریڈی شہر کی حدود کے بیچ میں تھی، یہ اس نے ذرا جگہ زیادہ لے لی تھی، کیونکہ یہ
شہر سے باہر بنی نا، یہ پہلی مسجد
باہر شہر کے باہر کی طرف جو بنی، پہلی مسجد بنی. اور نگٹ مسجد کیونکہ اس نے پھر زیادہ احاطہ لے لیا تھا، پھر انہوں نے اپنا فیونرل ہوم یہاں شروع کیا، پھر انہوں نے یہاں پہ اسکول شروع کیا، یہاں جم شروع کیا، अल्हम्दुलिल्लाह दिस द प्रोजेक्ट इज़ ग्रेट. और नगेट मस्जिद, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि गो के इन दिनों में मस्जिदों में जाया तो नहीं जाता, मगर आप ऑनलाइन इसको डोनेशन ज़रूर दीजिएगा. जनाब यूसुफ बदाद, ज़रूर अपने बच्चों को इनके साथ लिंक में रखें. यूसुफ बदाद ट्विटर के ज़रिए बच्चों के साथ जुड़ के रहते हैं, तमाम सोशल मीडियाज़ का इस्तेमाल करते हैं. वेरी लर्नड एंड अ वेरी फाइन इमाम मैं कह सकती हूँ, दैट इज़ जनाब यूसुफ बदाद साहब. एंड यंग पीपल जो हैं उनको बाज़ुकात अपने जैसे लोगों की कंपनी माइल भी करती है अच्छाई की तरफ. जी माजिद भाई,
चलिए अब चलते हैं. आपके 5:15 और 20 सेकेंड हमारी घड़ी में हो चुके हैं. कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम, फिर वापस आते हैं.
कोविड 19 के इस मुश्किल दौर में सिटी ऑफ ब्रैम्पटन अपने बुजुर्गों और सीनियर्स के लिए ग्रॉसरीज या दवाइयों की तरसील के लिए मदद कर रही है. आपसे गुजारिश है कि पील पब्लिक हेल्थ की नसीहत पर अमल करें और घर पर रहें. 311 पर कॉल करें या covid19seniors@brampton.ca पर ईमेल करें, चाहे ग्रॉसरीज मंगवानी हो या दवाइयाँ. 10 बजे अप्रैल की 30 तारीख को रजिस्टर करें सीनियर्स टेलीफोन टाउन हॉल के लिए, या फिर 311 पर कॉल करके आप जान सकते हैं कि सिटी ऑफ ब्रैम्पटन किस तरह बुजुर्गों की मदद कर सकता है.
थैंक यू ऑल आवर डॉक्टर्स,
थैंक यू ऑल आवर नर्सेस,
थैंक यू ऑल आवर पैरामेडिक्स,
थैंक यू ऑल आवर पुलिस फोर्स,
थैंक यू ऑल आवर फ्रंटलाइन वर्कर्स.
कोविड 19 को ख़त्म करने के लिए हमें अपना किरदार अदा करना है. बाकायदगी से हाथ धोएं, साबुन और पानी के साथ सफाई का खास ख्याल रखिए. बिला ज़रूरत बाहर मत जाइए. फासला और एहतियात बहुत ज़रूरी है. कोविड 19 की अलामत में बुखार, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी होती है. अगर आपको ये आसार जाहिर हैं या आप बैरून मुल्क से सफ़र करके कैनेडा वापस आए हैं, इस सूरत में आपको 14 दिन के लिए घर के अंदर सबसे अलग कमरे में रहना लाजिम है. अपना ख्याल रखिए. ontario.ca/coronavirus की साइट पे जाके मुकम्मल मालूमात हासिल कीजिए.
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने. उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नु मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे.
SNS Lawyers को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है. अपने हक जानने ले या सलाह लेण ले आज ही SNS Lawyers नु कॉल करो 416-655-2000.
आप कनाडा से पाकिस्तान पैसे भिजवाना चाहते हैं और वो भी फौरन जबरदस्त रेट्स के साथ और आराम से घर बैठे? आपको ये सब मिलेगा बगैर कॉम्प्रोमाइज के. अभी डाउनलोड कीजिए Zoom Money Transfer App from PayPal. That's XOOM Zoom. और अपने मोबाइल से पैसे भेजिए अमेजिंग एक्सचेंज रेट्स के साथ, बैंक डिपॉजिट्स, कैश पिकअप या मोबाइल रिचार्ज. अब पाकिस्तान पैसे भेजें उंगली के इशारे से. Zoom, a PayPal service. तेज, आसान और महफूज मनी ट्रांसफर.
कर्जे से निजात के लिए एक ही नाम, मोहम्मद सिद्दीक. ऑल द सॉल्यूशन, पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा.
मोहम्मद सिद्दीक ऑल डेट सॉल्यूशन बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी कंसोलिडेशन करते हैं अप टू 80%. मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं. पुरसकून जिंदगी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन. अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए, कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक 416-671-0577.
क्या आप या आपकी फैमिली डेथ, डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस जैसी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार है? अगर नहीं तो सन लाइफ के प्रदीप जी का नाम याद रखिएगा 416-894-5872.
जी हाँ, सलाह मशवरे और किसी भी पॉलिसी के रिव्यू में मैं प्रदीप सिंह आपकी पूरी मदद करूँ.
ट्रस्ट वर्दी ऑनेस्ट चार्टर्ड लाइफ अंडरराइटर एंड कैनेडियन हेल्थ स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप फ्रॉम सन लाइफ 416-894-5872.
और हर मंडे को मेरे टॉक शो में जरूर शामिल.
Muslim Welfare Canada has made a concerted effort to lead the fight against child labor, poverty and illiteracy in third world countries. Through the generous support of our donors, over 400 children, both girls and boys, receive free, good quality education. Help educate a needy child for just $1 a day or $30 per month. Donate generously. Call 1-866-754-3111. or visit mwcanada.org.
खाने का इंतजाम तो बहुत ही जबरदस्त है और मेन्यू भी कमाल का है, बनाया भी कितना लजीज है।
ये सब कमाल है किराना हट का। दावत हो तो केटरिंग बहुत खूब करते हैं और अगर वैसे बाहर खाना खाने को दिल चाहे तो समझो हर उम्र की पसंद किराना हट पर मौजूद। और हाँ, एक और बात, इस खाने के बाद गारंटीड नो हार्ट बर्न।
किराना हट का मुझे भी नंबर दें, हमारे यहाँ कोई ना कोई मेहमान आता ही रहता है।
किराना हट मिसेस सागा में, बस कॉल कर लीजिए 9054058383
एशियन फूड सेंटर 9057931338। आपके किचन की तमाम जरूरियात एक ही छत तले। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज एंड स्टेफल्स, ब्रेड डेयरी एंड एग, बेवरेज एंड कन्फेक्शनरी, ब्रांडेड फूड्स, पर्सनल केयर एंड हाउसहोल्ड, स्वीट्स एंड समोसास। Order now for in-store free pickup 9057931338. Home delivery is also available. Asian Food Center 9057931338. Asian Food Center.
जी सामने करें, वेलकम बैक टू रेडियो साजो आवाज़। 5:20:40 हमारी घड़ी में हो चुके हैं। आज मंडे का दिन है और मंडे के दिन जो है जनाब हमारे साथ होते हैं सन लाइफ फाइनेंशियल से मुंसलिक प्रदीप जी। 4168945872 प्रदीप जी का फ़ोन नंबर है और प्रदीप जी हमें आके डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो हमें बताएंगे जनाब प्रदीप जी। प्रदीप जी, वेलकम टू रेडियो साजो आवाज़, कैसे हैं आप?
थैंक यू वेरी मच माजिद भाई, आपको और आपके सभी लिसनर्स को मेरा वेलकम टू द टॉक शो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और रमजान की सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद माजिद भाई।
थैंक यू सो मच जी।
और आज का टॉपिक जो आपने, आपका सीधा सवाल था वो ये, आज हम कंपेयर करेंगे अपनी मॉर्गेज के ऊपर बैंक का मॉर्गेज इंश्योरेंस प्लान वर्सेस एक प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस प्लान जो कि सन लाइफ जैसी कंपनी करती है आपके लिए।
तो ब्रीफली अगर आप बोथ द प्लान्स, बैंक मॉर्गेज इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस फ्रॉम सन लाइफ, दोनों को जरा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें।
पहली बात तो मजीद भाई क्या है कि जब हम लोग घर लेते हैं तो यहाँ पर इतना पैसा तो बहुत कम ही लोगों के पास होता है जो कि सारा लमसम पे करें और भाई मॉर्गेज फ्री घर ले लें, है ना
जी, जी।
तो कुछ लोग होते हैं ऐसे लेकिन बहुत कम। तो बाकी लोग जो कि लेते हैं घर, वो लेते हैं कि कुछ अपने पास से पैसे लगाए और कुछ ज्यादातर पैसा बैंक से देती है उनको, है ना
जी।
तो ये तो आप जानते हैं, आप तो रियल एस्टेट के चैंपियन हैं माजिद साहब। तो उसमें ये क्या होता है कि अब ये सवाल आता है कि भाई अगर खुदा ना करे कुछ हादसा हो गया, यानी कि डेथ हो गई हस्बैंड वाइफ में से किसी की जो कि घर के ओनर्स हैं, है ना, तब क्या होगा? तो उस समय घर के पैसे कौन देगा? नहीं तो घर नहीं के पैसे नहीं देंगे तो फिर बैंक वापस ले लेगी अपनी प्रॉपर्टी। तो इसके लिए बैंक फिर फोर्स करती है कि भाई अपना जो लोन है तुम्हारा उसके ऊपर कवरेज ले लो हमसे, और ताकि अगर आपकी डेथ हो गई अनटाइमली तो हम आपके लोन को वेव ऑफ कर सकें। तो ये उनका प्रमाइस होता है और ये कोई गलत चीज नहीं है, ये अच्छी चीज है। अच्छा, तो इस तरह से बैंक करती है, लेकिन इस तरह के जो प्लान्स होते हैं उसमें बहुत सारी वीकनेसेस होती हैं। आदमी, हमें तो लगता है कि भाई हमारा लोन वेव ऑफ हो जाएगा, लेकिन ये जो प्लान होता है इसमें कई सारी कमजोरियां होती हैं माजिद भाई, जो कि एक प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जैसे सन लाइफ है वो भी लाइफ इंश्योरेंस देती है उसमें नहीं होती, है ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव, इसका मकसद तो अच्छा होता है लेकिन बहुत ही कमजोरियों के साथ, और बैंक अपने काफी सारे फायदे रख के ये प्लान को देता है मालिक साहब, ये उसका वो है। तो अब हम आज कंपेयर करेंगे कि इसमें किस तरह की एग्जैक्ट बातें हैं जो कि उसमें उसकी खामियां और एक प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस प्लान की स्ट्रेंथ को जाहिर करती हैं।
एक जो पहला सवाल मेरे दिमाग में आता है वो कवरेज है साहब, कवरेज कवरेज अमाउंट जो है दोनों में सेम रहता है या डिक्रीजिंग होता है?
हाँ, ये बहुत कायदे का सवाल पूछा मजीद साहब आपने। अब आप देखें कि फॉर एग्जांपल कि हमारे ऊपर लोन है $5,00,000 का बकाया लोन, तो बैंक कहती है कि भाई आपका जो लोन है वो हम माफ कर देंगे। अब आपने पैसे देने शुरू किए अपनी मॉर्गेज की तरफ, है ना, आप चाहते हैं भाई जल्दी जल्दी पैसे दूं ताकि इंटरेस्ट कम लगे और अपना कर्जा उतारूं। तो अब आप फर्ज करें कि आपने 25,000 दे दी, तो आपका जो लोन था वो 5,00,000 से कम होके 475 रह गया। तो अगर उस टाइम कुछ हादसा होगा माजिद साहब, तो बैंक क्या करेगा, वो 475 का लोन वेव ऑफ कर देगा। और आपने और कर्जा उतार दिया तो अब मान ले 4.5 का हो गया, 4.5 लाख हो गया, तो 4.5 लाख ही उतारेगा। लेकिन प्रीमियम उसका सेम का सेम रहेगा, जो फीस चार्ज करती है बैंक तो उसकी वो सेम रहेगी। लेकिन सन लाइफ के केस में क्या होगा कि अगर आपने 5 लाख का कवरेज लिया है और कुछ हादसा हो जाए माजिद साहब, तो 5 लाख ही देगी फैमिली को कंपनी सन लाइफ, चाहे फिर आपका लोन 5 लाख हो, 4 लाख हो, 2.5 लाख हो या 0 हो जाए, है ना। 5 लाख का आपके ऊपर कवरेज है तो 5 लाख ही मिलेगा, एक तो ये बात। दूसरी चीज क्या होती है कि बैंक में हस्बैंड की डेथ हो, वाइफ की डेथ हो या दोनों चले जाए, तो भी जो भी बैलेंस अमाउंट है वही बैंक क्लियर करेगा। यानी कि अगर 4.5 बचा है, 4.5 लाख का लोन, तो और हस्बैंड वाइफ की कोई समझ लें कि रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो भी बैंक 4.5 लाख ही वेव ऑफ करेगा। जबकि सन लाइफ के केस में 5 लाख हस्बैंड और 5 लाख वाइफ, से 10 लाख हम बच्चों के लिए देंगे टैक्स फ्री माजिद साहब, ये फर्क।
सब फोन नंबर नोट कर लें, प्रदीप जी का फोन नंबर है 4168945872, 4168945872 इनका फोन नंबर है। अक्सर आप ओनरशिप की बात करते हैं, तो इसमें प्लान का ओनरशिप कौन होता है?
प्लान की ओनरशिप बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका अहम सवाल है। बैंक के केस में क्या होता है माजिद साहब, बैंक के केस में बैंक इसका ओनर होता है, यानी कि बैंक ही लाइफ इंश्योरेंस फराहम करता है एक फीस लेके कंज्यूमर को। बैंक ओनर होता है और कंज्यूमर उसका एक मेंबर होता है उस प्लान का। तो और हमारे केस में कंज्यूमर जो है वो खुद में ओनर होता है। तो इसका फर्क ये होता है कि अब जब जहां पे बैंक ओनर है और आपने मॉर्गेज मान ले CIBC से चेंज करके आप चले गए TD बैंक में 5 साल के बाद, तो आपका कवरेज खत्म हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि वो जो कंडीशंस होती है वो बैंक सेट करता है कि आपके लोन की कंडीशंस के अलावा आपके इंश्योरेंस कवरेज की कंडीशंस बैंक सेट करता है आपके लिए।
जो प्लान चॉइसेस होती हैं जिसको कहते हैं आप,
जो प्लान चॉइसेस, हाँ बस एक ही प्लान होता है बैंक का, वो बैंक ने सेट कर दिया, क्योंकि बैंक ओनर है, आप उसके मेंबर हैं। और आपका कवरेज कब तक है, जब तक आप उस प्लान के वो हैं। अगर आपने मॉर्गेज चेंज कर दी या कुछ और बात हो गई तो आपका किसी और बैंक में चले गए तो खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे केस में आप ओनर हैं, तो आप चाहे किसी भी बैंक के पास जाएं, चाहे TD, चाहे नेशनल बैंक, चाहे CIBC, आप ही कवर ओनर रहेंगे। और आपके पास मॉर्गेज हो या ना हो या कितनी भी हो, चाहे आप किराए के घर में मूव कर जाएं, तो भी आपका कवरेज बरकरार रहेगा। क्योंकि फर्क यह है माजिद साहब कि बैंक बकाया लोन को कवर करता है और हम आपकी लाइफ को कवर करते हैं। हम यानी कि सन लाइफ आपकी लाइफ को कवर करता है, तो आपकी लाइफ को हम सन लाइफ कवर कर रहा है, तो आप कहीं भी जाएं आप कवर्ड हैं। बैंक ने सिर्फ बकाया लोन को कवर किया है, इसलिए लोन उतर गया या आपने लोन कहीं और ट्रांसफर कर दिया तो आपका बैंक वाला कवरेज खत्म हो जाएगा माजिद साहब।
अगेन नंबर फॉर जनाब प्रदीप जी 4168945872, 4168945872। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसमें अंडर राइटिंग अप फ्रंट या बैक एंड, इसके मुताबिक कुछ बताइए।
अंडर राइटिंग में क्या होता है कि बैंक तो इस तरह से देखती है कि भाई 5 साल तक ये आदमी हमारे साथ है, और कई बार ओपन मॉर्गेजेस या 3 साल की मॉर्गेज या 2 साल की मॉर्गेज, तो उससे भी कम टाइम तक है। तो बैंक क्या करती है कि अपना खर्चा कम से कम रखती है, प्रॉफिट ज्यादा रखती है। तो कहते हैं कि भाई सवाल जवाब जो बेसिक क्वेश्चन है उनका, वो एक फॉर्मेट फॉर्म सा होता है, उसमें यस नो करो और हम आपको दे देंगे। लेकिन जब क्लेम आता है तब बड़ी गहराई से बैंक जांच करता है, क्योंकि करनी भी हुई कि भाई आपने इंश्योरेंस लिया तब आप उसके लिए एलिजिबल थे भी कि नहीं थे, आपके जो सवाल कि आपने जवाब दी वो करेक्ट थे भी कि नहीं थे। तो इस प्रोसेस में टाइम बहुत लगता है और कई बार क्लेम के डिनाई होने के चांसेस भी हो जाते हैं, क्योंकि आपने जवाब कुछ दिया और बैंक ने अप्रूव किया कि जवाब सही नहीं था। लेकिन सनलाइफ के केस में क्या होता है कि तो ये जो बैंक करता है, इसको कहा जाता है, अमूमन यही करता है, प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं बैक एंड अंडरराइटिंग, यानी कि जब जरूरत होगी तब जाके वो करेंगे अंडरराइटिंग। हमारे यहाँ फ्रंट एंड होती है। फ्रंट एंड का मतलब कि हम पहले ही आपसे बहुत सवाल पूछते हैं, जरूरत हुई तो आपका मेडिकल वगैरह होता है वो सनलाइफ के खर्चे पे होता है, नर्स आपके यहाँ आती है, आपके डॉक्टर से रिपोर्ट लेती है सनलाइफ, वो भी सनलाइफ के खर्चे पे। तो सारे सवाल जवाब बड़ी तफसील से हम लोग आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं और उस मालूमात के वेरिफिकेशन के लिए मेडिकल्स होते हैं या डॉक्टर या स्पेशलिस्ट की रिपोर्टें ली जाती हैं जो कि आप सनलाइफ के खर्चे पे होती। तो उससे क्या होता है कि ये जो फ्रंट एंड अंडरराइटिंग कहलाती है ये कंप्लीट हो जाती है, तब जाके आपका प्लान इश्यू होता है। उससे सबसे बड़ा फायदा ही होता है माजिद भाई कि क्लेम टाइम में परेशानी नहीं आती। इसीलिए सनलाइफ कहता है कि अगर 5 साल से आपकी पॉलिसी चल रही है तो हम 5 दिन के अंदर उसका पैसा देंगे, उस पर इंटरेस्ट भी देंगे और आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मांगेंगे।
416-894-5872 जनाब प्रदीप जी का फोन नंबर है। मेरा आखिरी सवाल आपसे टैक्सेस ऑन लाइफ इंश्योरेंस पे है, टैक्सेस का क्या सिचुएशन होती है इसमें?
टैक्स में माजिद भाई सिचुएशन ऐसी होती है कि जो लाइफ इंश्योरेंस है आपका, जो इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस है जिसमें आपने बेनिफिशियरी को नॉमिनेट किया है, जैसे कि सनलाइफ से हम इंश्योरेंस देते हैं तो आप नॉमिनेट करते हैं अक्सर करके अपनी वाइफ को, और ये भी करते हैं कि अगर मैं और मेरी वाइफ एक साथ चले गए तो बच्चों को ट्रस्टी भी बनाते हैं। तो उस समय क्या होता है कि आपने नॉमिनेटेड आपके बेनिफिशियरी को अगर क्लेम अमाउंट जाता है खुदा न करे डेथ होने पे, तो उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता कैनेडियन कवानीन के तहत। और कैनेडियन कवानीन के तहत माजिद भाई ये पैसा क्रेडिटर प्रोटेक्टेड होता है, यानी कि कोई कह नहीं सकता कि प्रदीप जी की तो डेथ हो गई और उनके उसमें से हमें भी कुछ चाहिए क्योंकि प्रदीप जी ने हमसे लोन लिया, कोई मेरी फैमिली को कह नहीं सकता अगर मेरी डेथ हो जाए। इसी तरह से कोई ये भी नहीं कह सकता कि वो मेरे बड़े दोस्त थे, उन्होंने हमसे वादा किया था कि $10,000 दे के जाएंगे या 20,000 दे जाएंगे अपनी वसीयत में से, तो वो भी कोई मेरी फैमिली को प्रेस नहीं कर सकता। जो पैसा है वो मेरी फैमिली को टैक्स फ्री मिलेगा और जो वो चाहेगी उस फैमिली को, उस मेरी फैमिली उस पैसे का उस तरह से इस्तेमाल कर सकेगी।
416-894-5872 आखिर में क्या कहना चाहेंगे सर आप?
आखिर में ये कहना चाहूंगा माजिद भाई, आप और आरिफा जी कम्युनिटी की बड़ी जबरदस्त खिदमत कर रहे हैं। आप लोगों के प्लान इतने, आप लोगों के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो इतने पॉपुलर और अच्छे होते हैं। इट्स अ प्लेजर डीलिंग विद यू बोथ, और मैं आप दोनों को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बल्कि पूरे स्टाफ को, और ये उम्मीद करता हूँ कि अगले मंडे को फिर से हमारी बड़ी खुश भरे माहौल में गपशप हो।
बहुत शुक्रिया 416-894-5872 प्रदीप जी का फोन नंबर है। प्रदीप जी थैंक यू सो मच।
बहुत शुक्रिया हमारे उन तमाम स्पॉन्सर्स का। मेगा मनी एक्सचेंज आगे बहुत से लोग रकम भिजवाने में थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा सा आजकल लेट हुआ है मामला। मैंने भी पाकिस्तान पैसे भिजवाए थे से आई सेंट मनी आई बिलीव ऑन थर्सडे को मैंने भिजवाई, मगर आज मेरी रकम वहाँ पाकिस्तान में मंडे के दिन को पहुँची। थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे संडे बाजू का ताकुता बैंक बंद भी होते हैं, तो रकम अगर आपने भिजवानी है तो मेगा मनी एक्सचेंज का नंबर नोट कर लीजिएगा। आप ईमेल ट्रांसफ़र के ज़रिए उनको रकम भिजवा सकते हैं। वेरी कन्वीनियंटली लोकेशन लोकेटेड कोथरा एंड 403 के इंटरसेक्शन पे आपको मिलेगा मेगा मनी एक्सचेंज। आज डॉलर का रेट 112 रुपये, 112 रुपये। उनका नंबर 9052794754 2794754 2794754। ई आवाज़ पे इंशाल्लाह अफ्तारी का प्रोग्राम जो आज हम आपके लिए स्पेशल ट्रांसमिशन पेश करेंगे। हमारी मतलब जो 3 दिन का मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा अफ्तारी के बाद, राइट आफ्टर द अफ्तारी सूरह यासीन सुनने को आपको मिलेगी। मुझे एक दो पेरेंट्स ने बल्कि कॉल करके, भाइयों ने, मर्दों ने ख़ास तौर पे कॉल करके मुझे कहा कि आप इस वक्त में कुरान पाक की रेसिटेशन अंग्रेज़ी के साथ कोई चीज़ लगाएं। मेरा तो बल्कि दिल करता है कि, हालांकि कुरान पाक में आपको पता है फिरौन का वाक़या, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या मैंने आपने कुरान पाक में भी पढ़ा हुआ है, मगर मैंने ना मोहम्मद अली के साथ इसकी एक फ़िल्म देखी थी फैरो की, ना आई थिंक फैरो के लिहाज से फिल्म थी, मुझे उसका नाम नहीं याद। तो मेरा कोशिश ये होगी कि हम अपनी यूथ के लिए कोई इस तरह की चीज़ें लगा सकें, मगर मगरिब की अजान के फौरन बाद हमारी कोशिश हुआ करेगी कि हम आपके लिए कुरान पाक की रेसिटेशन कोई लगाया करें। बिल्कुल साहब, ये चैनल आपका अपना है, प्रोग्राम को बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बेइंतहा शुक्रिया। अफ्तारी का सेगमेंट आप हमारे साथ करेंगे 770 AM पे भी, रेडियो पे भी हम आपके साथ आज भी 8:15 तक हम आपके साथ होंगे, 8:20 तक, 8:20 तक, 8:20 तक 770 के रेडियो पे। आखिर में आपको स्टैटिक मिलेगा, यस यू विल गेट इट, फाइंड इट स्टैटिक, मगर रेडियो के साथ साथ वी आर ऑन द टेलीविजन एज वेल। ई आवाज़ के नाम से हमारा टेलीविजन है, ई आवाज़ के नाम से। आज शाम को भी मुश्तबा भट्टी साहब होंगे, आज सुबह सेरी में मैं प्रोग्राम देख रही थी, काशफा साहिबा ने प्रोग्राम बड़ा प्यारा पेश किया, जिसमें यकीनन हम बहसियत मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में आप बात कर रही थी। मुश्तबा भट्टी साहब का प्रोग्राम बहुत खूबसूरत है, आप उस प्रोग्राम को देखिए। नगेट मस्जिद का प्रोग्राम बहुत प्यारा है, मैं आप इमेजिन करें कि यूसुफ बदात साहब इसको पेश करते हैं, अयंग इमाम, बल्कि आप अपने बच्चों को कहें वो यूसुफ बदात को फॉलो करना शुरू कर दें। अगर ये वो कहते हैं ना कि मैं अपना भला चाहूँगी, माई बेनिफिट, कि ये जो बच्चों के बिग ब्रदर एंड बिग सिस्टर का मामला जो शुरू होना है, यूसुफ बदात साहब हमारे साथ होंगे टेलीविजन पे और रेडियो दोनों के ऊपर। नगेट मस्जिद की पेशकश है और नगेट मस्जिद स्कारब्रो में है, नगेट मस्जिद को आपकी देखिए मामले बेशक बंद है। अब आप और मैं घरों के बिल, बिजली का बिल आना बंद तो नहीं हो गया, पानी का बिल आना बंद तो नहीं हो गया, और मसाजिद में चंदे से ये मस्जिदें चलती थी, और जब लोग ही नहीं जा रहे तो मस्जिद के बिल्स तो अखराजात तो वहीं के वहीं हैं। तो नगेट मस्जिद को प्लीज़ डू सपोर्ट जेनरसली। इस्लामिक फाउंडेशन IFT, इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ टोरंटो, IFT या इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ टोरंटो या नगेट मस्जिद आप गूगल कर लीजिएगा और इसको सपोर्ट करें। सपोर्ट की बात हो रही है तो मुझे एक और कमर्शियल भी जो ख़ास तौर पे आपके साथ शेयर करना है, वो है मुस्लिम वेलफेयर सेंटर का। अगेन बेशुमार लोगों की जॉब्स गई हैं, बेशुमार लोगों की जॉब्स गई। आज बल्कि बिल गेट्स ने बड़ा अपने कंसर्न्स का इजहार किया है कि कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया में कोरोना के पेशेंट कम है, तो उन्होंने तो इसको मुर्दे जाम ठहराया कि पुअर टेस्टिंग की वजह से शायद ऐसा हुआ। तो मैं बात कर रही थी मुस्लिम वेलफेयर सेंटर का। मुस्लिम वेलफेयर सेंटर को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बेशुमार लोग इस मुल्क में रहते हुए भी दे कैन नॉट एफोर्ड टू बाय द ग्रोसरीज, जिसमें हलाल गोश्त वगैरह ख़ास तौर पे शामिल है। आपको पता है प्याज की कीमत 6 से 7 डॉलर पर पाउंड पे चली गई है, 2.99 का था 10 पाउंड का। चिकन ब्रेस्ट जो थी वो सेल के ऊपर 4.5 डॉलर की भी आती थी, कल मैंने ली 7.5 डॉलर पर पाउंड चिकन ब्रेस्ट। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बल्कि इस बात की तरफ निशानदेही की थी कि चीज़ों की कीमतें महंगी होंगी। आपको पता है ये पोर्क की एक फैक्ट्री है जो बंद हो गई है, लोगों को जॉब से COVID-19 की वजह से लोगों को जॉब से जाना पड़ा। तो कहने की बात यह है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी तो पहले ही बड़ी मुश्किल थी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुस्लिम वेलफेयर सेंटर टोरंटो में है, आपकी उम्मीद का, आपकी इमदाद का मुस्तहिक है। आप ख़ुद गूगल करके देखिएगा मुस्लिम वेलफेयर सेंटर, कितने लोग उसके ऊपर काउंट करते हैं। बेशुमार लोग अपनी बीमारी की वजह से रोज़ा नहीं रख सकते। ऑफ कोर्स पहला हक आपके रिश्तेदारों का है, मेरे रिश्तेदारों का मुझ पे पहला हक है, फिर मेरे जानने वालों का है, और उसके बाद फिर ये इदारे और मसाजिद। मुस्लिम वेलफेयर सेंटर को प्लीज़ हेल्प जेनरसली 416-754-8116। रमज़ान की ट्रांसमिशन के अलावा इस हवाले से वो कहते हैं वॉच लाइव डिस्कशन ऑन द बेनिफिट्स ऑफ रमदान एंड द रोल प्लेड बाय द कम्युनिटी मॉस्क, मस्जिद के क्या रोल है हमारी और आपकी ज़िंदगी में। पहला अशरा है रहमतों का अशरा है, रहमतें हमने तलाश करनी है। ई आवाज़ टेलीविज़न आप अपने तमाम जो बॉक्सेस हैं उन पे आप पाकिस्तानी चैनल्स में देख सकते हैं, या वेरी सिंपल, वेरी सिंपल कि अगर आपके पास आईपैड है, कंप्यूटर है, तो आप हमारी वेबसाइट eawaz.com पे जाएं, तो वहां जाके आप हमारा लाइव टेलीविजन वॉच करें। खबरों का वक्त हुआ जाता है, मैं खबरों की तरफ लेके जाना चाहती हूँ क्योंकि बीबी का भी रोज़ा है। मैं चाहती हूँ कि बीबी टाइम पे घर चली जाए। जी माजिद
भाई जी, और शाजी जी आपको बार बार इनवाइट किया जा रहा है, मगर शाजी जी
तो माजिद भाई आप अपना कोई, आपने तो कमर्शियल लगाने थे।
मैं तो कमर्शियल भी लगाने हैं, और कमर्शियल
लगा दें तो बहुत अच्छा, फिर हम ड्रम रोल के साथ, जैसे आप लोगों को वेलकम करते होते हैं, आप ड्रम रोल के साथ वेलकम।
ड्रम रोल बना है तो मैम, रमजान में ड्रम रोल को छुट्टी दे दी हमने, तो कुछ रिस्पॉन्स के पैगाम आप फिर पढ़ाना वापस।
अरे क्यों रमजान में ड्रम रोल क्यों मना है?
मना नहीं है, हमने मना किया है कि हमने कहा कि नहीं, इनको जरा रेस्ट दे दिया जाए, छोटी छोटी खबरें होंगी।
ठीक। सोना यानी गोल्ड खरीदना या बेचना है तो एक काबिले एतमाद नाम रूबी ज्वेलर्स याद रखिएगा। असलम या इकराम भाई से मुलाकात कीजिएगा। हाथ के बने हुए या मशीनी जेवरात, इतनी वैरायटी है चूड़ियों और करों में, चेन्स में, आप सोने की खरीदारी के लिए एक बा एतमाद नाम रूबी ज्वेलर्स विजिट जरूर कीजिएगा। प्रोग्राम का रेफरेंस देंगे तो डिस्काउंट भी है, और सोने की रिपेयर कोई चार्ज नहीं। रूबी ज्वेलर्स 7086 एयरपोर्ट रोड मॉल्टन में, रूबी ज्वेलर्स। गाड़ियों की हर तरह की रिपेयर के लिए ब्राइट ऑटो सर्विसेज, नासिर भाई से राब्ता कीजिएगा। प्रॉब्लम छोटी या फिर बड़ी, आपकी गाड़ी को रखेंगे हमेशा सड़क पर।
ब्रेक स्पेशल्स, मोस्ट कार्स रोटर्स एंड पैड्स इंस्टॉल्ड, फ्रंट एंड रियर $220 ओनली। सिरेमिक पैड्स, क्वालिटी रोटर्स, मफर वेल्डिंग $60 ओनली। पहुंचिए आप 8 स्ट्रैटन एवेन्यू डिक्सी एंड एडवांस के कॉर्नर पर।
ओपन 7 days अ वीक, Bright Auto Services, 905-790-0019। खूबसूरत दांत, बाएतमाद मुस्कुराहट और बाएतमाद गुफ्तगु, आपकी और आपके खानदान की मुस्कुराहटों की जमीन। फिलिंग्स, क्राउन्स, ब्रिजेस, क्लीनिंग, एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स, फ्री कंसल्टेशन, दांतों की संभाल के लिए डॉक्टर पद्मजा, 310 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट, 299-7466।
जी सामने कराए, वेलकम बैक टू रेडियो साजो आवाज़। 5:48 और 58 सेकंड हमारी घड़ी में हो चुके हैं भाई। आज अगर आप रमज़ान मुबारक के चौथा रोज़ा है आज, और चौथे रोज़े में मैं आपको बता दूं कि आज कितने बजे खुलेगा साहब। आज डिफरेंट मसाजिद के डिफरेंट इलाकों के डिफरेंट टाइमिंग्स हैं, तो हम एक टाइमिंग आपको बताएंगे, मगर आपसे दरख्वास्त यही है कि अपने मकामी मस्जिद, मकामी इलाकों से आप जो टाइम होगा उसके लिहाज से आप खोलिएगा। सेंट्रल आज 8:16 पे, 8:16 पे जो है आज मगरिब की अजान होगी, और साहब कल सुबह जो है सहर जो है वो ख़त्म होगी आपके, अल्लाह भला करे, 4:46 पे, 4:46 पे। तो फिर मेरी दरख्वास्त यही है कि आप अपने मसाजिद और अपने इलाकों के मुताबिक अफ्तार और सहर करें। और आपका ताल्लुक है फिका जाफरिया से, तो फिका जाफरिया का आज का टाइम जो है 8:35। चलिए साहब, विदाउट एनी डिले, एंड आज अभी फौरी तौर पर मैं लिया चलता हूँ आपको शाजिया मलिक की जाने पर। शाजिया मलिक जी आपको सुनाएंगी पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरें। जी शाजिया जी, माइक आगे कर लें, मेरा ख्याल रोज़ा तो आपको लग रहा है, मगर माइक आगे कर लें तो क्या ही बात है।
आज तो ख्याल ही नहीं रहा।
वही मैंने कहा था कि
रोजा ज्यादा लग रहा है,
रोजा ज्यादा लग रहा है, मगर लोग आपकी आवाज भी सुनना चाहते हैं।
ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी। वो असल में मौलवियों की बातें हो रही थी ना, तो वो मुझे भी एक लतीफा याद आ गया। वो पाकिस्तान में किसी ने कहा कि भाई गवर्नमेंट को कि भाई ये फैमिली प्लानिंग नहीं हो रही, ये पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही, बड़े रिसोर्सेज कम है, तो ये मौलवियों को बोलें आप इनको आगे लगाएं इस काम के लिए ना। तो वो उन्होंने कहा, उनको मौलवी साहब को गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा मौलवी साहब तुसी अनाउंस करो हैं तो बच्चे दो ही अच्छे और ये वो। तो वो जुमे की जब नमाज हो गई तो उसके बाद मौलवी साहब ने वाज देना शुरू कर दिया, और उन्होंने अनाउंस किया भाई बच्चे दो ही अच्छे। तो वो बीच में कोई बैठा हुआ था उधर महफिल में, तो उन्होंने कहा मौलवी साहब हमें तो आप कह रहे हैं बच्चे दो ही अच्छे, आपके तो अपने 10 हैं। तो मौलवी साहब कहने अच्छे थे दो ही ने ना बिचों। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि भाई आप खुद कुरान पढ़ें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से खुद आप हदीस उनकी पढ़ के उनसे रोशनी आप लें और खुद अपनी थोड़ी सी समझ जो ये जो अल्लाह ने डब्बा दिया ऊपर इसको इस्तेमाल करें।
आप किसी की रोजी पर लात मार रही हैं?
नहीं सर, मैंने किसी की, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैंने मौलवियों के खिलाफ कुछ बात नहीं की, मैंने कहा आप अपना खुद भी कुछ पढ़ें, खुद भी कुछ कर लें ना सारा कुछ उस पर। जैसे अब वो थे ना, इसी तरह एक और लतीफा मुझे याद आ गया, देखें वो बहुत सारे ना हेड्स ऑफ स्टेट अल्लाह के पास चले गए, कोई अमेरिकन था, फ्रेंच था, ब्रिटिश था, पाकिस्तानी था, जर्मन था, तो सारे वो चले गए जो थे, जर्मन, ब्रिटिश, फ्रेंच, अमेरिकन। तो अल्लाह ताला को कहा, अल्लाह ताला हमारे काम सीधे करो हमारे काम। अल्लाह ताला ने कहा नहीं नहीं भाई जाओ, मैं तुहानू बड़े अकल समझ बहुत कुछ दे देता है, जाओ अपने काम खुद सही करो। तो वो पाकिस्तानी उधर बैठा रह गया, तो वो निकलने लगे, तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला यू आर गॉड, यू नो यू कांट शो डिस्क्रिमिनेशन, ये पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर आपके पास क्यों बैठा रह गया? कहते हैं क्योंकि इसने सारा कुछ मेरे पे छोड़ा हुआ है तो इनके सारे काम मैंने सीधे कर रहे हैं, तुम लोग अपने काम जाके खुद सीधे करो
ठीक है।
तो इसका कहने का मतलब ये है कि खुद भी अपनी भी थोड़ी सी कुछ समझ नॉलेज को इस्तेमाल कर लें आप।
ठीक हो गया,
हाँ जी ठीक है। अच्छा जनाब, ये हम थोड़े अपने स्पॉन्सर्स का भी बता देना। ये है जी विलेज टेस्ट, यहाँ पे होते हैं फैसल चट्ठा साहब, इनका नंबर है 9052323663। ये हैं 4141 डिक्सी रोड मिसेस सागा पे। तो आप इनसे अगर अपने कोई आपकी आप अच्छा खाना खाना चाह रहे हैं या अफ्तारी के वक्त कुछ लेना चाह रहे हैं तो इनको फ़ोन कर लें, और टेक अवे ऑफ कोर्स इज अवेलेबल। एबल एक्सप्रेस से अगर आपने ज़कात भेजनी है पाकिस्तान या और भी कोई अपने प्यारों को पैसे भेजने हैं तो आप इमरान मुजफ्फर साहब को फ़ोन कर सकते हैं एबल एक्सप्रेस पे, और इनका नंबर है 4162304444। इसके अलावा एशियन फूड, अगर आप जाहिर है कि रमज़ान का महीना है तो आप ज़्यादा कर रहे हैं ग्रोसरीज़, तो आप इनको फ़ोन कर सकते हैं 9057931338। यहाँ पे बहुत अच्छी ताज़ी जो है चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके अलावा न्यू फातिमा ग्रोसर्स जो है उनके ऊपर भी आपको हर तरह का सामान जो आपको चाहिए अपना रोज़ा खोलने के लिए आपको मिल सकता है। तो आप इनको फ़ोन करें कादर भाई को ऑन 9058487000, और दे आर लोकेटेड एट 512 ब्रिस्टल रोड मिसेस सागा। इसके अलावा मुस्लिम वेलफेयर बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं, तो आप उनकी इनको अपनी डोनेशंस दे सकते हैं एंड बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ, क्योंकि ये बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं जो भी अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं। इनका नंबर है 4167548116। और जनाब ये हैं हमारे कुछ स्पॉन्सर्स, इनको प्लीज़ आप हमारे स्पॉन्सर्स जो हैं उनको ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि वो इन हालात में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आपको पता है हम अपने हमारे जो बिजनेसेस हैं वो चलते हैं हमारे स्पॉन्सर्स के ऊपर। तो ठीक है माजिद भाई, शुरू कर लेते हैं हम खबरें
जी।
तो ये आज मैं ट्रूडो साहब का सुन रही थी अभी बयान, और वो कह रहे थे कि जो इन्होंने जो लास्ट वीक हम बता रहे थे आपको कि वेज सब्सिडी जो इन्होंने अनाउंस की थी बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, तो आज वो ट्रूडो साहब कह रहे थे कि तकरीबन 10,000 बिजनेसेस जो हैं वो पहले घंटे में, आज क्योंकि उसको खोला गया था तो पहले घंटे में ही 10,000 बिजनेसेस जो हैं उन्होंने अप्लाई किया है। इसमें यह है कि 75% जो है गवर्नमेंट देगी लेकिन 25% आपको डालना पड़ेगा। तो ये एक गवर्नमेंट की बहुत अच्छी एक थी पॉलिसी थी, और लेकिन इसमें आप देखें कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है। इसके अलावा ट्रूडो साहब ने आज कहा है कि हमारी लाइफ जो है हमेशा के लिए वो चेंज हो जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि उस तरह से हम रह सकेंगे जो कोविड 19 से पहले हम रहते थे, तो वैसे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि थिंग्स विल ऑफ कोर्स चेंज इन लाइफ। तो आपको क्या लगता है माजिद भाई, चेंज क्या आएगी?
एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी चेंज्ड। लाइक लोग आपस में एक दूसरे से करीब, पहले होता था ना कि आप किसी से हाथ मिला रहे हैं, किसी से गले मिल रहे हैं, एंड बहुत अच्छे दोस्त हैं तो आपस में एक दूसरे को गले मिल के, गले भी लगा के प्यार भी कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वो चीज़ जो है वो अब मेरा ख्याल है दूर हो जाएगा। और जैसे आपने कल सुनाया था ना कि वो महमूद और अयाज का, कि महमूद जो है
मारी
महमूद अयाज खड़े हो गए बराबर में और महमूद ने मारी छींक, अयाज गायब हो गया,
दूर दूर तक नजर नहीं आया अयाज।
तो वो चक्कर जो है हर एक पे डाउट शुरू हो जाएगा कि भाई डाउट क्या है कि भाई हुस्ता ये सिख है, हुस्ता ये खराब, इसकी तबीयत खराब है। तो हालांकि पहले ये इन्फ्लुएंजा और कोल्ड जो था वो वक्त के लिहाज से आता था और बेइंतहा लोग उसके थ्रू भी काम किया करते थे और नोबडी एवर केयर्ड, मगर अब जो है हालात मेरा ख्याल है कि ज़रा
बस मेरी आपने जो ईद की खुशी थी ना उसके ऊपर तो आपने इतना बड़ा सारा काटा मार दिया मेरा दिल मेरा। मैं सोच रही थी
ईद की नमाज तो वैसे ही
नहीं नमाज तो होनी है कि नहीं होनी है वो तो हमने घरों पे ही पढ़नी है अब नमाजें सारी, लेकिन वो जो उसमें
गले मिल देगा
खाने थे ना किसी के घर जाके मुझे लग रहा था कि अब खुल जाएगा थोड़े दिनों तक तो शायद कोई अच्छा खाना हम किसी के घर जाके खा लेते, लेकिन आपने मेरी खुशी बर्बाद कर दी।
एक रस्म दुनिया भी है आज तो गले मिल ले जाने, तो मेरा ख्याल है कि वो गाना उसको दोबारा से करना पड़ेगा कि भाई अभी रस्म दुनिया नहीं रही है अब तो अब वो जो है वो गले मिलना रस्म दुनिया नहीं है अब तो दूर रहो, कोनी कोनी से ईद भी लगे ईद मुबारक और ईद मुबारक और ईद मुबारक।
अच्छा यानी आप अपने जो भी खाना है जी अब अपने घर में ही खाना है
या घर में खाना है?
हाँ, कोई किसी के घर जाके आप अच्छी दावत नहीं खा सकते।
हमें तो मिलेगा आप ईद के दूसरे दिन।
अच्छा अच्छा चलिए ठीक है सर, मुझे मेरा हिस्सा उसमें जरूर रखना।
नहीं, हम आप पे डिपेंड कर रहे हैं।
मैं ईद के पहले दिन से छुट्टी पे हूँ सर।
नहीं ईद के दूसरे दिन तो आप नहीं लेके आना है।
नहीं मैं छुट्टी पे हूँ सर, मैंने आपको कह दिया मैं पूरे हफ्ते छुट्टी पे हूँ।
छुट्टी पे हो मगर खाना तो लेके आ जाएं आप, यहाँ पर खाना ला के छोड़ के आप चली जाएं आप।
अच्छा अच्छा,
हमें आपसे थोड़ी मतलब है, हमें खाने से मतलब है।
अच्छा जनाब ठीक है। अच्छा तो जनाब इस तरह का एक प्लान जो है वो डकफोर्ड साहब भी सोच रहे हैं, लेकिन डकफोर्ड मेरे साथ है, आप नहीं है बिल्कुल।
अच्छा अच्छा,
डकफोर्ड साहब कह रहे हैं मैं प्लान कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता ऑन्टेरियो को खोलने में, तो तकरीबन 5 फेजेस में शायद जो है प्रोविंस अब खुलेगा आहिस्ता आहिस्ता।
पहले क्या खोल रहे हैं वो?
एसेंशियल बिजनेसेस खोलेंगे, लेकिन मेरा इनको ये मशवरा मैं इनको ईमेल डालने लगी हूँ सर, सबसे पहले क्योंकि ईद भी आने वाली है आप ब्यूटी पार्लर खोल दें प्लीज।
पहले सबसे पहले ये खोल रहे हैं मतलब ये पार्क्स वगैरह और उसके बाद जो है खोलेंगे वो फ्यूनरल्स।
यस फ्यूनरल्स
देख लीजिए आप पहले।
तो सर वो अब जब दाढ़ियां इतनी लंबी हो जाएंगी तो बस मरने का ही मुकाम हो जाएगा। देखें बड़े वाइज हैं डकफोर्ड साहब, उनको पता है कि औरतों ने तो मर जाने अपने आप को देख।
दाढ़ियों की बात कर रहे हैं?
ना औरतों की, मैं तो सर मर्दों के साथ हूँ आपको पता है माजिद भाई, मैं तो औरतों के साथ नहीं हूँ। अच्छा जी तो ये है जनाब इसमें, ठीक है जी। अच्छा इसके अलावा जो खबर आई थी हमें फ्राइडे को ही वैसे आ गई थी, लेकिन इसमें ये कहा गया था और रादर ज्यादा क्लैरिटी वीकेंड पे ऊपर आई थी कि अब स्कूल्स जो हैं वो 31 मई तक बंद रहेंगे और जो ऑनलाइन जो हैं बच्चों की पढ़ाई वो वैसे ही चलती रहेगी। और इसमें जो स्टीफन लेचर साहब ने कहा कि हमने बहुत सारे बच्चे जो कि कनेक्टेड नहीं थे इंटरनेट के साथ या जिनके पास कोई कंप्यूटर्स या कुछ नहीं थे, तो हमने उनको आईपैड्स भी दिए हैं और हमने उनको कनेक्टेड रखा हुआ है स्कूल्स के साथ। और इसी तरह हम और भी दूसरे लेवल पे भी बात कर रहे हैं कि बच्चों की तालीम जो है वो कैसे कंटिन्यू रखी जा सके। अच्छा जनाब ऑटोवा ने जो एक और अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, कि 62.5 मिलियन डॉलर्स हम जो फिश और सी फूड सेक्टर है उसके ऊपर स्पेंड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सी फूड जो है वो न सिर्फ होटल्स और रेस्टोरेंट्स में बल्कि घरों में भी जो बच्चे हैं बहुत शौक से खाते हैं, तो ये काफी इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री, तो ये इंडस्ट्री भी बिल्कुल मर रही थी, तो इसको मरने से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसके ऊपर अब इतने जो है इन्वेस्ट करेंगे ताकि ये फ्लरिश रहे और इनका काम चलता रहे। क्यूबेक में हम आपको हमेशा बताते हैं कि केसेस बहुत हाई हैं कंपेयर टू रेस्ट ऑफ कैनेडा, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हमने जो अपनी पीक रीच करनी थी शायद वो कर ली है, तो अब हम स्लोली एलिमेंट्री स्कूल्स खोलेंगे और डे केयर सेंटर्स भी मई 11 से खोलना शुरू कर देंगे, लेकिन जो हाई स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज हैं वो शायद फॉल तक बंद रहेंगी। माजिद भाई हाउ वाइज इज दिस डिसीजन ये जो क्यूबेक वाले कह रहे हैं?
नो आई डोंट एग्री विद दैट, क्योंकि वहां पर हाईएस्ट डेथ जो है पूरे कनाडा में वो वहां पर है, और वो उनका ख्याल ये है कि वो इलाके जहां पर इतनी कोविड नहीं फैली है उन इलाकों के स्कूल हम खोलेंगे, मगर
फैल जाएगी अगर खोल
कोविड
तो।
यस कोविड दिशा यही है कि जहां भी आप खोलेंगे जहां भी गैदरिंग्स होंगी वहां पर हो सकता है, क्योंकि बच्चे जो है दे आर कैरियर्स, शो इट ऑफ बट दे आर द कैरियर्स ऑफ कोविड,
क्योंकि वो चीजों का एहतियात कहाँ करते हैं, कहाँ हाथ धोते हैं या कहाँ दूर रहते हैं, वो तो उनको तो आप खोल देंगे तो दे आर गोइंग टू बी रोली पोली यू नो
ऑल ओवर द प्लेस, बच्चे बच्चे ही
जी बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अच्छा जनाब ये थी, और एक दुख की खबर है, एक 15 साल का बच्चा था नॉर्थ यॉर्क में, तो पुलिस को खबर आई कि वो शायद वहाँ पे गोलियाँ चली हैं, तो उसको गोली लगी हुई थी, उसको उन्होंने फॉरन क्रिटिकल कंडीशन थी उस बच्चे की, उसको रश किया हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई, तो दिस इज़ वेरी सैड। अच्छा सर वही हम जो बड़े दिनों से कर रहे थे माजिद भाई, और जो हम फ्राइडे को भी हमने कहा था कि यूएस और तालिबान की जो डील हुई थी वो चलनी नहीं है, तो बस वही है, आज यूनाइटेड नेशंस ने रिपोर्ट अपनी छाप दी और उसमें उन्होंने कहा है कि वायलेंस जो है बहुत इंक्रीज कर गई है और तकरीबन 500 बंदे मर गए हैं और 700 इंजर्ड हैं इन द वेरी फर्स्ट 3 months ऑफ दिस ईयर. जबकि ये आप देखें, जबकि ये सारी डील्स की और इसकी बात हो रही थी, तो ये अब चलने वाली नहीं है. ये इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक किताब लिखी हुई है सर, उसने पुलित्जर प्राइज मिला था इनको, स्टीव कोल साहब को. इन्होंने एक किताब लिखी है द बिन लैडेंस. तो अगर वो आप किताब पढ़ें तो उसने बहुत ही ज़बरदस्त जो है, वो न्यूयॉर्कर के साथ थे, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे, फिर वाशिंगटन पोस्ट के साथ भी लिखते रहे हैं, तो एक बड़ा ज़बरदस्त जैसे जर्नलिस्टिक पीस होता है ना, उसके ऊपर बेस करके उन्होंने अपनी बुक लिखी हुई है द बिन लैडेंस. वो आप ज़रूर पढ़ें, उसमें आपको सारा पता चलेगा कि बिन लैडन फैमिली कहाँ से आई, फिर बाप जो है वो कैसे फ्लरिश कर गया, कैसे उसके ताल्लुकात बने सऊदी रॉयल फैमिली के साथ, और कितने ज़्यादा फिर देन दे रीच्ड यूएस की बड़ी बड़ी फैमिलीज के साथ वो बिजनेस करने लगे, और उसमें से ये जो लड़का था उसामा जिसको के इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजा था, कैसे इसका एकदम से दिमाग जो है बिल्कुल ही हट गया, और जो है ये कैसे इसने सोचा कि मैं जो अब जिहाद करूंगा. तो इट्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग बुक. मैं तो बिल्कुल उसको जब पढ़ी थी मुझे लग रहा था मैं अफीम की तरह नहीं होता, जैसे एडिक्शन इतनी कि मैं कह रही थी नेक्स्ट सफा जो है जल्दी से पलटू और मैं देखूं. तो इट वॉज अमेजिंग.
टुक अ एक्सट्रीम टर्न. जी, एक तरफ तो ये हम सऊदी से निकले, यूरोप आए, और यूरोप आके उन्होंने आई बिकेम यूरोपियन.
बिल्कुल.
एंड आफ्टर दैट उन्होंने एक यू टर्न लिया, एंड किस तरीके से यू टर्न लिया नोबडी नोज. मगर
इनके इस बुक में जो मेंशन है ना मजीद भाई, वो बुक में मेंशन है कि इसके एक दो उस्ताद थे जो कि जो इस्लामिक सेंटर में इसको मिले, और फिर उन्होंने इसको आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू किया व्हाट इज यू नो द राइट पाथ, और जो भी उन्होंने उसको बताया तो उससे ये बहुत ज्यादा रेडिकलाइज हो गया. एंड देन ही स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं जो है क्या कर रहा हूँ दुनिया में, मेरी एग्जिस्टेंस का क्या, क्योंकि जो इसका दूसरा भाई था वो भी बहुत ही ज्यादा फ्लैम्बॉयंट था जो कि यूएस की कंपनीज के साथ और उधर बिजनेसेस कर रहा था. तो इसने सोचा बैठ के कि मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय लाइफ, एंड देन ही चेंज. और फिर इनके साथ मिल गए, यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये भी सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं था, फिर अहमद अल ज़ुहैरी वो भी इनके साथ मिल गए. एंड इफ यू ऑल्सो रीड, इस बुक में तो वो नहीं है, लेकिन इफ यू ऑल्सो रीड द हिस्ट्री ऑफ अल ज़ुहैरी, आप सोचें कि इसके अबाव अजदाद
इजिप्शियन.
हाँ, इजिप्शियन था वो सऊदी नहीं था. ये भी बेसिकली सऊदी बिन लैडन नहीं थी फैमिली, ये यमन से आके सेटल हो गए थे.
एंड देन वाज बोर्न इन
जी सऊदी, तो इन्होंने सऊदी वो ले ली थी. तो जो अहमद अल ज़ुहैरी हैं, उनकी कभी आप हिस्ट्री पढ़ें, उनके जो फोर फादर्स हैं उन्होंने अल अज़हर यूनिवर्सिटी जो है जो इजिप्ट की, जिससे हम आज भी वी सीक गाइडेंस, उनके पायनियर्स में से थे, और जो पूरा उन्होंने उसमें चेंज किया सिस्टम अल अज़हर का, तो उसमें से थे. इसका इनके जो वालिद, इनके जो दादा थे अहमद अल ज़ुहैरी के, वो शेख थे वहाँ पे अल अज़हर यूनिवर्सिटी में. तो मतलब वेरी नोबल फैमिली एंड यू नो हाईली एनलाइटेंड और पढ़े लिखे लोग, और उन्होंने भी आके फिर इनको ज्वाइन किया. तो आई मीन उनका तो इतना जिक्र नहीं है इस किताब के अंदर, बल्कि एक आधी को शायद मैंशन, लेकिन बाकी जो बिन लैडन फैमिली की जो सारी है कि भाई क्या था, बाप क्या था, बाप ने कैसे शुरू किया, एंड देन ऑल, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक. आप पढ़ें, आपको अगर आप लेते हैं, आप इफ यू आर ऑन मैरिजुआना आप छोड़ देंगे मैरिजुआना. तो अच्छा जनाब, ये जो बोरिस जॉनसन साहब हैं प्राइम मिनिस्टर यूके के, वो जरा सेहत याब हो गए हैं. आज उन्होंने अपनी पहली वो भी दी, अपीयरेंस भी दी है, और वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं लग रहा कि अब मुल्क के अंदर कोई मेजर आउटब्रेक होगा, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि वो दे हैव रीच द पीक अब. और अब वो उनको भी लोग कह रहे हैं कि अगर अब ऐसी बात है और कुछ सुधार की शायद शक्ल नजर आ रही है, तो आप लॉकडाउन जो है जरा उसके अंदर थोड़ी सी कम वो करें,
मगर उन्होंने कहा है कि अभी ना करें.
हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं इट्स गोइंग टू बी टू सून. हाँ, इट्स गोइंग टू बी टू सून, उन्होंने बिल्कुल कह दिया. हाँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि डोंट रश, क्योंकि द स्पाइक इज गोइंग टू बी, अनदर स्पाइक इज गोइंग टू बी डेडली, उन्होंने ये कहा.
फर्स्ट फेज.
जी बिल्कुल. हाँ जी. अच्छा जी, क्वीन एलिजबेथ ने, अब इसको जुल्म कह लें या जो भी कह दें, जितना भी उनका स्टाफ है उसको वो कह रही है कि तुमने घर नहीं विजिट करने, तुमने इधर ही रहना है हमारे पास ही. जान इसे कि कहीं, मुझे लग रहा था मैं ड्रीम कर रही थी, जैसे हमारी बड़ी बड़ी बेगमात है ना पाकिस्तान में, बेचारी अब बर्तन धो रही हैं, कपड़े धो रही हैं, टाट मार रही हैं, खाने बना रही हैं, क्योंकि मुलाजिम तो सारे चले गए हैं. तो मुझे लग रहा था क्वीन भी शायद प्रिंस फिल्म के लिए खाना बनाएंगी. लेकिन ऐसा उन्होंने करने नहीं दिया. देखे मेरे ड्रीम्स पे पानी फेर दिया क्वीन ने. उसने कहा मेरा कोई मुलाजिम, मेरा कोई स्टाफ मेंबर नहीं जाएगा, इधर ही रहेंगे सारे. اچھا جی, یہ جناب کم جونگ ان جو ہیں وہ ابھی تک اپیئر نہیں ہو رہے ہیں. وہ کچھ تو خبر ٹچ کی ہے عرفا باجی نے کہ وہ لگ رہا ہے شاید کہ ان کو وہ ہو گئی ہے COVID-19, لیکن اس کے اوپر آج بہت زبردست انٹرنیشنل پریس میں آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں کہ ان کی ہسٹری کیا ہے, نارتھ کوریا کس طرح کا کنٹری ہے, اس کو کون نیکسٹ رول کر سکتا ہے, اس کی بہن کا کیا رول ہوئے گا اگر وہ بن جائے. تو وہ جو انڈین فلم میکر نہیں ہے رام گوپال ورما, ان کی آج میں ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس کی بہن جو ہے کم جونگ ان کی اگر بن گئی پریزیڈنٹ آف نارتھ کوریا, شی از گوئنگ ٹو بی ایکسٹریملی بروٹل, اپنے بھائی سے بھی زیادہ بروٹل ہوئے گی, لیکن ایک اچھی بات ضرور ہوئے گی کہ پہلی وومن پریزیڈنٹ ہوئے گی اس ملک میں, کیونکہ وہ بڑے کنزرویٹو ہے نا, تو وہ عورت کو نہیں چاہتے کہ وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوئے. تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن یہ پہلی ہوگی, تو کہتا ہے مجھے شاید ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا مجھے اپنی فلم بنانے کے لیے مسالہ ملے گا. تو ان کا آج میں پڑھ رہی تھی. اچھا جی, جو بائیڈن صاحب جو ہیں ان کو جو لاسٹ لیڈنگ ڈیموکریٹ تھیں, یہ نینسی پلوسی, ہم ان کے بارے میں سنتے رہتے ہیں, یہ بڑا